Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktivinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Aaj tapasya ke bare mein thoda sa bolna chahta hu. Zaruri tapasya ke bare mein bolna aur tapasya karna do alag cheez hai. तो पहले समझना चाहिए तपस्या क्या है और किस लिए करना है, क्योंकि विशेषकर वैदिक संस्कृति में आध्यात्मिक धर्म में प्रवेश करने के लिए तपाश्चर्य अनुमोदित है और इसलिए अनादि काल से इस भारत भूमि पुण्य भूमि में बहुत तपस्वी थे और आज तक भी बहुत तपस्वी है जो घर तपस्या करने से प्रयास करते हैं इंद्रिय दमन करना, और यही तपस्या का उद्देश्य है. योग इंद्रिय संयम्य, योग जिसमें तपस्या एक मुख्य अंग है, योग का उद्देश्य है इंद्रियों को संयम या दमन करना. और किस लिए इंद्रिय दमन करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा भवबंधन होते हैं. हम बहुत कुछ देखते हैं, सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और मन में उस बहुत बहुत दूसरे विषय पर हम चिंतन करते हैं और ऐसे हम मनोरथ पर चल के चल के पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शायनम पुनः पुनः जन्म होते, पुनः पुनः मृत्यु होते, पुनः पुनः एक माता के पेट में प्रवेश करना है. तो ऐसा होते है क्यों, क्योंकि इंद्रियों की असंख्य अपार इच्छाएं है, कामनाएं है, और वो सब इच्छाएं की पूर्ति करने का प्रयास करने के लिए बार बार जन्म लेना है. तो ऐसे समझ के योगियां प्रयास करते हैं इंद्रियों दमन करना, स्तब्ध करना तपस्या के द्वारा. तो कैसे जानते हैं कि इंद्रियों के द्वारा भवबंधन होते, तो वैदिक शास्त्र से इसी ज्ञान प्राप्त होते हैं. और वैदिक शास्त्र में ये निदर्शन है तपस्या करना, जैसे कि वो इंद्रिय सुख भोग विलास करना की इच्छा का दमन होगा, कम जाएगा. तो ऐसा है वैदिक संस्कृति में, और विशेषकर ब्रह्मचारी गृहस्थ नहीं ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी तपस्या करते हैं और तपस्या से वैराग्य होना चाहिए. वैराग्य का मतलब अनासक्ति. अभी हम सब आसक्त होते हैं ये सभी इंद्रियों के विषय पर. अगर एक अच्छा पिक्चर देखते हैं तो हम आकर्षित होते हैं, अगर एक युवक तो सुंदरी युवती देखते हैं तो आंखों का आकर्षण होते हैं, अगर अच्छा संगीत सुनना है तो आकर्षण होते हैं. तो तपस्या कहना है जैसे कि वो सब इंद्रियों का आकाश और इंद्रियों के विषय के लिए, तो वो सब स्तब्ध होगा। और गृहस्थ आश्रम में भी वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति का मतलब दान आश्रम धर्म, तो गृहस्थों भी व्रत लेते हैं तपस्या करना, तो सब आश्रम के लिए कम से कम वान आश्रम चातुर्मास्य पालन करना है वैदिक संस्कृति में। तो गृहस्थों के लिए भी तपस्या करना चाहिए, लेकिन गृहस्थ आश्रम में लाइसेंस जैसे है थोड़ा सा इंद्रिय सुख भोग करने के लिए, तो गृहस्थ आश्रम में वो लाइसेंस देना का मतलब विवाह संस्कार, तो विवाह के बाद, विवाह करने के बाद तो वैदिक संस्कृति में शक्यता है इंद्रिय सुख भोग करने, उसके पहले नहीं है। और निवृत्त होने से मतलब वानप्रस्थ या सन्यासी होने से तो फिर तपस्या चालू करना है, तो गृहस्थ आश्रम में भी तपस्या करना है, लेकिन इतना खोरा रूप से नहीं। लेकिन वैदिक संस्कृति में तो सभी आश्रम में और विशेषकर उच्चन वर्णों ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों में तपस्या पालन करना चाहिए, तो इसका अर्थ है इंद्रियों को दमन करना, क्योंकि इंद्रियों अगर दिला है, अगर वो सब नियंत्रण करने का प्रयास नहीं होते हैं तो मनुष्य तो पशु जैसे, पशु तो कभी भी तपस्या नहीं करते हैं, पशु सदैव भोग विलास के लिए प्रयास करते हैं। तो मनुष्य जीवन में चेतना पाशविक नहीं होना चाहिए, वास्तविक मानवी बुद्धि है जिसमें उच्च चिंतन आते हैं, जिसमें भव बंधन को छुटने का प्रयास होता, तो यही वास्तविक मानव जीवन है वैराग्य तपस्या पालन करना। लेकिन तपस्या ही वैदिक संस्कृति का उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य नहीं है, और खाली इंद्रिय दमन करना वो भी वैदिक संस्कृति का उद्देश्य नहीं है। तो तपस्या पालन करना है इंद्रियों को दमन करने के लिए, जैसे कि वो मन स्थिर और शांत होगा, और ऐसे मन में वैदिक संस्कृति का वास्तविक उद्देश्य अर्थात कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, तो ऐसे मन जिसमें विचलन नहीं होते हैं, तो तपस्या के द्वारा तो इंद्रियों शांत हो जाते हैं, तो ऐसे मन में भक्ति आसान से आते हैं। वास्तव में भक्ति प्राप्य वस्तु नहीं है, मैं बोला था कि भक्ति प्राप्त करना है, तो ऐसे ही बोलना है, लेकिन वास्तव में सबके हृदय में भक्ति है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे ये उदय। जीव का स्वाभाविक धर्म है भक्तिमान, भक्ति करना, भक्ति का मतलब कृष्ण की सेवा करना। लेकिन क्योंकि हमारी पूरी वृत्ति भोग आकांक्षा से आवृत हो गया है, इसलिए वो कृष्ण भक्ति जो सभी आत्मा की संपत्ति है तो वो आच्छादित हो गया है, सुप्त हो गया है, और इसलिए भक्ति के द्वारा वो सुप्त कृष्ण भक्ति पुनः जागृत होना चाहिए। तो कौन भक्ति ग्रहण करेंगे? तो सब भक्ति ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। तो समाज में दो प्रकार के व्यक्ति देखते हैं, ध्रुवभूतो सागे लोके स्मिन दैव असुर एव च, विष्णु भक्त स्मितो दैव असुरस्तद्विपार्यय। मानव समाज में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक है भक्त जो देव कहलाते हैं विष्णु भक्त, और दूसरा है तद विपरीत असुर। तो भक्त है जिनके स्वभाव, जिनकी प्रवृत्ति है विष्णु सेवा करना, और असुर की भावना है हम विष्णु सेवा नहीं करेंगे तो खुद की सेवा करेंगे या हमारे कुटुंबों या देश की सेवा करेंगे, लेकिन विष्णु सेवा हम कभी भी नहीं करेंगे। और असुर भी विष्णु भगवान की अस्तित्व भी विश्वास नहीं करते हैं। तो विष्णु भक्त देव होना चाहिए, असुर नहीं होना चाहिए। असुर जन भी तपस्या करते, रावण हिरण्यकशिपु तो बड़े तपस्वी थे, लेकिन उन्होंने तपस्या की भौतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, दूसरे व्यक्तियों को परेशान देने के लिए। तो ऐसी तपस्या असुरिक है। तो नहीं है कि सब तपस्वी संत है, बहुत धुरता तपस्वी भी है, असुरिक तपस्वी भी है। तो आज तक भारत में तपस्वी साधुओं को लोग बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि तपस्या ही वैदिक संस्कृति का वास्तविक उद्देश्य नहीं, वो है उपाय है, उद्देश्य नहीं है। इट इज अ मीन्स एंड नॉट एन एंड। तो उपाय है जिससे मन शांत हो जाएगा, इंद्रिय सुख के लिए तृप्ति तो कम जाएगी। जैसे कि मन प्रस्तुत होगा शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, और वास्तव में भक्ति के द्वारा वो शुद्ध कृष्ण भक्ति पुनर्जागृत होते हैं। इसलिए भक्ति जीवन में इतना सा कठोर तपस्या ग्रहण करने का कोई आवश्यकता नहीं है। श्री नारद पंचरात्र में एक सुंदर श्लोक है जिसमें इसी मंतव्य है, आराधितो यदि हरिस्तपसा तथा किम, नाराधितो यदि हरिस्तपसा तथा किम। अर्थात यदि एक व्यक्ति कृष्ण भक्ति में युक्त है, कृष्ण भक्ति कहते हैं, तो उनके लिए तपस्या करने का क्या आवश्यकता है? अर्थात कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तपस्या है एक उपाय जिससे कृष्ण भक्ति प्राप्त होते हैं। तो केवल तपस्या करने से भक्ति प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन वो मन शांत होते हैं और मन थोड़ा सा प्रस्तुत होते हैं कृष्ण भक्ति ग्रहण करना। और नाराधितो यदि हरिस्तपसा तथा किम, और यदि तपस्या करने है लेकिन तपस्या करने से हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं होते हैं, तो तपस्या करने से क्या कल्याण हुआ? कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि तपस्या करना अच्छा है तो ऐसा व्यक्तियों के लिए जिनके हृदय में कृष्ण भक्ति का प्रवेश नहीं हो, जिनके मन में कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ धारणा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तपस्या करना अच्छा है, अनुकूल है। लेकिन वास्तव में कृष्ण भक्ति सभी प्रकार का तपस्या से उत्तम है। जैसे कि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपाहृष्णम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि एक व्यक्ति भक्ति के साथ मुझको फल फल जल पत्र अर्पण करते हैं, मैं भगवान सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ऐसे सामान्य अर्पण ग्रहण करते हूँ, अगर भक्ति के साथ निवेदित होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण नहीं कहते हैं भगवद गीता में कि घोर तपस्या करो, नहीं, कृष्णा हमारी भक्ति चाहते हैं, तपस्या नहीं। तो पौराणिक इतिहास में हम देखते हैं कि बहुत भक्त भी पूर्व काल में तपस्या की। तो किस लिए हम कहते हैं कि तपस्या भक्तों के लिए तपस्या करने का कोई आवश्यकता नहीं? तो वास्तव में भक्ति में तपस्या, ऐसे घर तपस्या, कठिन तपस्या, ऐसे तपस्या का कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर भी प्राचीन काल में बहुत भक्त तपस्या की, विशेषकर भक्ति में शक्ति प्राप्त करना, भगवान की सेवा करने के लिए, जैसे कि द्रोणा धारा और श्रीमद् भागवत में ये वर्णन है, जैसे कि कैसे द्रोणा और धारा तपस्या की और उसका फल से नंद और यशोदा, अगले जन्म में नंद और यशोदा भगवान कृष्ण के बाप और माँ हुए। तो वास्तव में नंद और यशोदा कृष्ण के नित्य पार्षद है। तो ये सब लीला है जिसमें हम जो साधारण जीव समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो कृष्ण को संतुष्टि विधान, फल फाल जाओ, वो सब अर्पण करना नहीं है। तो फल फाल जाओ पाता तो सभी जगह में उपलब्ध है, लेकिन उसके साथ भक्ति, शुद्ध भक्ति, पूर्ण भक्ति अर्पण करना चाहिए। तो फल फाल जाल पत्ता तो वो ये सब सरलता से उपलब्ध है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति वही दुर्लभ है। तो कृष्णा हमारी भक्ति चाहते हैं। तो क्योंकि हम भक्ति से बहुत दूर है, इसलिए भक्ति मार्ग में भी कुछ तपस्या ग्रहण करने की आवश्यकता है। जब तक हम भक्ति सिद्धि, प्रेम भक्ति नहीं मिलते हैं, तब तक कुछ तपस्या करना चाहिए, जैसे कि हम इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त होंगे। तो कम से कम इतने सी तपस्या करना चाहिए इस काली युग में, जिसमें ऐसा कठोर तपस्या करना लोगों की शक्ति नहीं है ऐसे करना। तो कम से कम इतने से तपस्या करना चाहिए कि सभी प्रकार का व्यसन और सभी प्रकार का नशा, चाय कॉफी तक और मांसाहार और अवैध स्त्री संग और सिनेमा जाना, ये सब जो जीव का वास्तविक धर्म, जीव का वास्तविक कल्याण के लिए नहीं है, तो ये सब वर्जन करना और हर समय भगवान का नाम लेना। तो वास्तव में यही तपस्या नहीं है, लेकिन क्योंकि हम भोग विलास पर लिप्त होते हैं, इसलिए हम जो पतित खली ग्रस्त जीव है, हम सोचते हैं कि यही तपस्या है। तो कृष्ण भक्ति जीवन शैली में तो शुद्ध सदाचार पालन करना चाहिए। घर तपस्या करना का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इंद्रिय सुख, भोग विलास तो वो भी नहीं करना चाहिए। तो शुद्ध रूप के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो यही भक्तिमय जीवन है और यही सब तत्व ज्ञान समझना चाहिए। तो भक्ति क्या है, कैसे भक्ति करना है, जैसे कि हमारा कल्याण होगा और ऐसे उपदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए, जैसे कि हमारा परम और सनातन कल्याण होगा। तो आज हम भक्ति में तपस्या क्या है, क्या करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी बोलो। लेकिन समझना चाहिए कि तपस्या ही भक्ति का मुख्य अंग नहीं है। थोड़ी सी तपस्या ग्रहण करना चाहिए, लेकिन भक्ति में मुख्य है श्रवण, कीर्तन और सेवा। तो ये सब करना चाहिए, सब के लिए शुरू है, भक्ति में शुरू है ये सदैव। अगर सदैव संभव नहीं है तो कम से कम एक बार दिन में सबका बोलना चाहिए ये शुद्ध और मधुर महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।